साईं राम। साईं वटना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
सत्यम शिवम सुंदरम 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 साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
बुद्धं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्य साईश शरणं गच्छामि,
सत्य साईश शरणं गच्छामि,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
सत्यम शिवम सुंदरम साईनाथ भगवान,
शिवम सुंदरम साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान,
बुद्धं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्य साईश शरणं गच्छामि,
सत्य साईश शरणं गच्छामि,
साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान।
आज से 2500 वर्ष से भी पहले एक सम्राट के घर में उत्साह मनाया जा रहा था। सम्राट के घर में पुत्र रतन हुआ था। बहुत समय के बाद राजा की अभिलाषा पूरी हुई, बेटे का जन्म हुआ तो उसको नाम दे दिया सिद्धार्थ। राजा का नाम था सुधोधर, उनकी पत्नी का नाम था माया। कहते हैं 7 दिनों के बाद, जन्म उपरांत 7 दिनों के बाद माया देवी का निधन हो गया। राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने इस पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। सम्राट अपने राज्य में उत्साहित था, बहुत धूमधाम से राज्य को सजाया गया, लोगों में मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरी ओर हिमालय की गोद में बैठा हुआ एक ऋषि जिसका नाम था अतिता, उसको अपने ध्यान योग से पता लगा कि एक राजकुमार ने जन्म लिया है संयोग वर्ष। राजा सुधोधन हसीता के मित्र थे। वह ऋषि हिमालय से उतरकर राजा के दरबार में पहुंच गया उनके पुत्र के दर्शन करने हेतु। हसीता ने जब पुत्र को देखा, राजकुमार को देखा, जोर जोर का हंसने लग गए, फिर जोर जोर का रोने लग गए। सम्राट बोले, ऋषिवर ये क्या कर रहे हैं? कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, क्या कारण है? ऋषि बोले, मैं इसलिए हंसता हूं कि मुझे इस बच्चे के दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और मैं रोता इसलिए हूं कि मेरा शरीर छोड़ने का समय निकट आ रहा है, इस बच्चे को मैं बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। कहते वहां पर उपस्थित पंडितों ने, ज्ञानियों ने, ज्योतिषियों ने इस बालक को लेकर भविष्यवाणी करी, या तो ये बालक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या सन्यासी। ये सुनकर राजा थोड़ा घबरा गए। उन्होंने अपने पुत्र को राजमहल के चार दीवारी से बाहर ही नहीं जाने दिया, उसको वहीं पाला। ये सोच के कि बाहर की दुनिया देखेगा, कहीं मन में सन्यास की भावना ना आ जाए। बच्चा बड़ा हुआ, समय पर उसका विवाह कर दिया। बच्चे की या सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका भी पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। कहते हैं एक बार सिद्धार्थ ने अपने सारथी से बोले, भाई ऐसे करो, मुझे जरा महल के बाहर ले चलो, मैं बाहर की दुनिया के दर्शन करना चाहता हूं, मैं बाहर देखना चाहता हूं क्या हो रहा है। कहते हैं जब वह रथ में बैठ के बाहर जा रहे थे, उनको रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया जो कमर को झुका कर चल रहा था। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, यह आदमी झुक के क्यों चल रहा है? और उन्होंने ये प्रश्न अपने सारथी से किया। सारथी बोला, महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है, उम्र के साथ इसकी कमर झुक गई है, हम सब बूढ़े होंगे और हमारी कमर भी ऐसे हो सकती है। थोड़ा और आगे गए, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। सिद्धार्थ बोले, इसे क्या हो गया? जवाब मिला, उत्तर मिला, ये बीमार है, इसका बीमारियां जकड़ा हुआ है, रोग से ग्रस्त है। साहब ये भी क्या गया, महाराज रोग किसी को भी हो सकता है। और आगे गए, उन्होंने देखा कि चार लोग एक व्यक्ति की अर्थी को लेकर जा रहे हैं, चार कांधों पर अर्थी को रखा हुआ, राम नाम तत्ते है, राम नाम तत्ते है। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, ये आदमी लेटा क्यों हुआ है? लोग उसको उठा के क्यों ले जा रहे हैं? उत्तर मिला, ये लेटा नहीं हुआ, ये सो नहीं रहा है, इसके प्राण पखेरे उड़ गए हैं, ये मर चुका है, इसको जलाने हेतु ले जा रहे हैं। क्या मतलब? जी महाराज यही सत्य है, आप चाहो या ना चाहो, अंत में जाके हमारे शरीर का यही होगा, हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। कहते उसके बाद सिद्धार्थ राजमहल में लौट के आ गए, विचारों में डूब गए। बारंबार उनके मन में विचार उठने लग गए। सर्वम दुखम, ऑल इज सॉरो, सब जगह दुख है। सर्वम भयम, ऑल इज फियर, सब जगह डर है। सर्वम अनित्यम, ऑल इज ट्रांसिएंट, सब कुछ अस्थाई है। सर्वम शून्यम, ऑल इज एम्प्टीनेस, सब खालीपन है, रिक्त है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं रात को अपनी पत्नी को पुत्र को सोते हुए छोड़ के चुपके से रान महल से बाहर चले गए अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। बहुत ऋषि मुनियों को मिले, बहुत पंडितों को मिले, वैज्ञानिकों को मिले, ज्ञानियों को मिले, कोई उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, विचार करने लग गया। कहते हैं 6 साल तो बैठे रहे वहां पर, अचानक चिल्ला उठे, मैंने चोर को पकड़ लिया। चोर का अर्थ था मन। कहते हैं उनके चेहरे की आभा चारों ओर प्रकाशित होने लग गई, उनको ज्ञान हो गया। यहां से उनका नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध। यहां से आरंभ होता है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्लेषण का धर्म है। तो ये नहीं कहता कि श्रद्धा रखो, जो ये नहीं कहता भक्ति करो, वो कहता है विश्लेषण करो, एनालाइज करो। ये विचार का धर्म है। मनुष्य का विकास, मस्तिष्क का विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है। आरंभ बुद्धि से है लेकिन अंत बुद्धि में नहीं है। अंत वहीं परमात्मा में है जहां केवल साक्षी रह जाता है। महात्मा बुद्ध ने कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी बात को मानो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। मलिक बोले अपदीपो भवा, अपने दीपक संयम बनो, अपना रास्ता संयम खोजो, अपना विश्लेषण करो, फिर धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा कि आप कौन हैं, क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने केवल एक मृत व्यक्ति को देखा, एक अर्थी को देखा, आंखें खुल गई, मन में प्रश्नों का तांता लग गया, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ है अपनी बुद्धि को जागृत कर लेना, अपने आप को समझ लेना, अपने मन पर काबू पा लेना। एक अर्थी देखी और हमने ना जाने कितनी अर्थियां देखी हैं। हम कितनी बार शमशान घाट पे गए हैं, कितने लोगों को हम दफना कर आए हैं, जला कर आए हैं, नदियों में बहा कर आए हैं, लेकिन फिर हम वही माया में, वही संसार में उलझ के रह जाते हैं। जीवन में दुख है, किसने दुख पैदा किया, ये दुख का कारण क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए। यहां पर उन्होंने 4 व्यक्तित्व दिए, 4 स्टेटमेंट दी, जिसे कहते हैं 4 Noble Truths। पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन में दुख है, या जीवन दुख से भरा हुआ है। सर्वम दुखम, सफरिंग हैज ए कॉज, ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा वक्तत्व, दुख का कोई कारण है। तीसरा, कॉज इज द डिजायर, दुख का कारण हमारी इच्छा है, हमारी इच्छाएं हमें बांध देती है। द ओरिजिन ऑफ सफरिंग बाइंड यू टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आपकी इच्छा आपको जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बांध देती है। आप कोई चीज की इच्छा करते हैं, कर्म करते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है। अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको अंदर गर्व हो जाता आ जाता है। गर्व कहना गलत होगा, शायद अहंकार आ जाता है। तीसरा वक्त थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज अ वे टू एंड द डिजायर, देयर इज अ वे टू एंड द सॉरो। कोई तो रास्ता होगा अपनी इच्छा को समाप्त करने का। तो फोर नोबल ट्रूथ, चार वक्तत्व, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग हैज ए कॉज, कॉज इज द डिजायर, देयर इज अ वे टू एंड द डिजायर। जीवन दुख से भरा हुआ है, दुख का कोई कारण है, दुख का कारण हमारी इच्छा है और इच्छा को दूर करने का कोई तरीका है। विचार कीजिएगा। अब इन इच्छाओं को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, विचार कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने मन की वृत्तियों को समझा। हमारा मन किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, हाउ आवर माइंड बिहेव्स। विचार कीजिएगा, आप सैर करने निकले हैं, सामने आपने सुंदरता भवन देखा, सुंदरता मकान देखा, आपके मन में एकदम से भावना आ गई, एकदम से इच्छा जागृत हो गई, काश मेरे पास भी ऐसा मकान होता। जहां इच्छा आ गई, वो इच्छा कहीं ना कहीं जाके आपको उत्तेजित करेगी, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगी, कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी कि आप उस प्रकार का मकान बनवाएं या खरीदें। ये मन की प्रवृत्ति है। मन एकदम से कोई चीज को देख के पाना चाहता है, वह बुद्धि से संपर्क नहीं करता, वह बुद्धि से बात नहीं करता। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता। मन बुद्धि में नित्य वार्तालाप होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। There has to be a constant communication between the two, constant and regular communication. महात्मा बुद्ध ने जो चार स्टेटमेंट दिए, चार नोबल ट्रुथ दिए, उनसे बाहर निकलने का रास्ता बतलाया, जिसको हम कहते हैं एट फोल्ड पाथ। वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। अगर हम इन बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हम दुखों को पार कर सकते हैं। पहला, राइट विजन, अर्थात आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। राइट विजन विल लीड टूवर्ड राइट अंडरस्टैंडिंग और वाइस वर्सा। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। दूसरा, राइट थॉट्स, आपके विचार सही होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए। आजकल कहते नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग, कीप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जगह जगह वर्कशॉप होती हैं थिंक पॉजिटिव ये समझाने के लिए। राइट थॉट का अर्थ है पवित्र विचार, या पॉजिटिव नहीं कह रहे, सकारात्मक नहीं कह रहे, या कह रहे विचार आपके पवित्र हो। आपके विचार के अंदर हिंसा ना हो, आपके विचार औरों को कष्ट देने वाले ना हो, आपके विचार औरों को हर्ट करने वाले ना हो, आपके विचार औरों को लूटने वाले ना हो, आपके विचार औरों को धोखा देने वाले ना हो, हालांकि अपने आप को भी धोखा देने वाले ना हो, आपके विचार हो समस्त लोका सखीनो भवंतु, सब लोकों में सुख शांति हो, इस प्रकार के विचार हो। तीसरा राइट स्पीच, आपकी वाणी सही हो। भगवान बाबा ने क्या क्या और कहा, ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली, राइट स्पीच, आप सत्य बोले, मीठा बोले, सॉफ्ट बोले, आपकी वाणी औरों को कष्ट ना दे। कहीं कहा गया था सत्य बोलो, मीठा बोलो, लेकिन वो सत्य ना बोलो जो कड़वा हो। सत्यम ब्रूहत प्रियम ब्रूहत, ना ब्रूहत ना सत्यम, ऐसे कुछ है। आपकी वाणी शुद्ध हो, विचार कीजिएगा वाणी आपकी कब खुलती है, आपके शब्द मुंह से कैसे निकलते हैं, आपके जीभ कौन से शब्दों का प्रयोग करती है, वो कहां से आते हैं, वो मन से आते हैं, वो आपके थॉट से आते हैं, विचारों से आते हैं। जब तक आपके विचार शुभ नहीं होंगे आपकी वाणी शुभ नहीं हो सकती है। राइट इनर कॉन्शियसनेस, अर्थात आपका अंतर्कर्ण शुद्ध हो। अब अंतर्कर्ण क्या है, मन, चित, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, आपके अंतर में जो भी है। चित क्या है, मेमोरी, जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जन्म जन्मांतरों की इंफॉर्मेशन चित में जमा हुई पड़ी है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसमें है, प्यूरिफाइड, पवित्र किया जाए। पांचवा राइट कर्म, अर्थात आपके कर्म शुद्ध हो। देयर हैज टू बी गुडनेस इन योर कर्म, आपके कर्म अच्छे हो। पहली बात यह है, भगवान बाबा ने क्या बोला, डू गुड, बी गुड, सी गुड। डू गुड, डू गुड, डू गुड, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करता रहे, लेकिन आपके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए, आपके अंदर इतनी तो शक्ति होना चाहिए, इतना तो विश्वास होना चाहिए कि मेरा कर्म खराब ना हो जाए। बस विचार कीजिएगा अच्छे कर्म कहां से होते हैं, कोई तो आपके अंदर बैठा हो आपसे कर्म करवा रहा है, हु हैज द कंट्रोल ओवर योर कर्मस, वो कौन है, आपके कर्मों पे कौन नियंत्रण कर रहा है, आपका मन या आपकी बुद्धि। जब तक मन आपका शुद्ध नहीं होगा कर्म शुद्ध कैसे होंगे। जब कहा गया राइट कर्म का मतलब है राइट थॉट वर्ड एंड डीड्स, यू कहना चाहिए हार्मनी एंड प्योरिटी इन थॉट वर्ड्स एंड डीज, आपके विचारों में, शब्दों में अर्थात वाणी में और कर्मों में एकता हो, पवित्रता हो, विचार पवित्र हो, शब्द जो बोलते हैं मुंह से पवित्र हो, जो कर्म करते हैं पवित्र हो, और सामंजस्य में हो, एकता में हो, हार्मनी में हो। हम सोचते कुछ हो रहे हैं लेकिन जब बात करते हैं कुछ और बोलते हैं और कर्म विपरीत कर बैठते हैं, हार्मनी नहीं है, एकता नहीं है, सामंजस्य नहीं है। छठा राइट साधना, आपकी साधना आपको सही दिशा पे ले जाए। ये साधना क्या है भाई? साधना का अर्थ केवल आपके रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं है। साधना का मतलब यह नहीं है कि हम मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। साधना क्या है? द हाईएस्ट साधना इज द कंट्रोल ओवर द सेंसेस। भगवान बाबा ने कहा द हाईएस्ट साधना, सबसे बड़ी साधना वो है जब आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लें। कोई गॉसिप कर रहा है, गपशप मार रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, एकदम से हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कितना भी शोर शराबा क्यों ना हो लेकिन वो बात सुनाई पड़ जाती है। हमारी आंखें यहां से वहां थिरकती रहती हैं, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी त्वचा, हमारे हाथ पैर, हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उन पे नियंत्रण पाया जाए। अगली बात राइट लिविंग। अर्थात जो आप जीविका चलाने के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अर्थात अनएथिकल नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से कर्मों से आप अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वो कर्म सात्विक होने चाहिए। सिंपल वर्ड में, साधारण शब्दों में, आप पे कर्म सात्विक होने चाहिए। अकेला राइट मेडिटेशन, आपका ध्यान सही होना चाहिए। अब ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए आप कह रहे हैं मैं भगवान को याद कर रहा हूं। आपका फोकस लाइफ का, दिन भर में आप जो कर्म करते हैं आपका फोकस कहां होता है? संपत्ति पे, धन पर, स्त्री पे, पुरुष पर, सांसारिक वस्तुओं पर। इसे कहा गया एट फोल्ड पाथ। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि यू मस्ट अवॉइड द एक्सट्रीम, यानी कि भूखे प्यासे रह के आप भगवान की आराधना करें और नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मिडिल पाथ को लीजिए। सम दृष्टि रखिए, इक्वेनिमिटी रखिए। रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्सहुड, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। सब बातें आप जानते हैं। महात्मा बुद्ध को लेकर तीन जो वक्तत्व बोले जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। गच्छ का मतलब होता है जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धा। यहां बुद्धा का मतलब बुद्धि। आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि के शरण में जा रहा हूं, अपनी बुद्धि से वार्तालाप करता हूं, इनर वॉइस की बात सुनता हूं, अंतर की वाणी को सुनता हूं। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन सर्विंग द सोसाइटी, मैं समाज की सेवा में अपना टाइम लगाता हूं, शर्म में जाता हूं। अंतिम बोला धर्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन डिवाइन लव, मैं दिव्य प्रेम में शरण लेता हूं। इसे कहा गया इन संक्षेप में बुद्धिज्म। जय श्री साईं।